मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2016 और इस सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार, और आज के इस afiis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और चूंकि आज से हमारे संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो मैं एक और शब्द आप लोगों के स्वागत के लिए उपयोग में लाना चाहूंगा, और वह है आप सबका मानसूनी स्वागत है। और साथ ही मित्रों, इसी क्रम में स्वागत है एक हमारे नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी और मार्च में जो 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है ऋषि देव पांडे, जो दिल्ली से हैं। तो ऋषि देव, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि शनिवार और इतवार दो दिन की छुट्टियों ने आपके अंदर ऊर्जा का संचयन किया होगा और एक नए जोश खरोश के साथ अब जो सप्ताह आपके सामने मौजूद है, इस सप्ताह का स्वागत करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आप तैयार हो गए होंगे। फ्रेंड्स, जब हम लोग लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मुझे नो डाउट इस बात की तो बेहद खुशी है ही कि आप सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मिलती हैं, और स्टूडेंट्स से हट करके भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनता है। दरअसल होता भी यही है फ्रेंड्स, कि अगर हमें रोजाना कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिल जाएं तो हमारी जो ऊर्जा है, अगर वह डीम है तो वो ऊर्जस्वित हो जाती है, और अगर वह निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। और इसीलिए हमारे यहां सत्संग को इतना महत्वपूर्ण बताया भी गया है, और तुलसीदास जी ने तो सीधे सीधे लिख दिया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है, और बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। उन्होंने ये भी कह दिया, ईश्वर की कुछ कृपा ही होती है कि हमें संत मिल पाते हैं। संत मतलब वही जो अच्छी बातें करते, संत का मतलब ये नहीं कि जो घर बार छोड़ के कमंड लेके निकल लिए हैं। तो जो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे दिमाग को कुछ पॉजिटिव इनपुट मिलते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जाती है, और जब निगेटिव इनपुट मिलते हैं तो वो फिर उल्टी दिशा में चलने लगती है। दोस्तों, ये तो बात है दिमाग की, जहां से हमारी जिंदगी के सारे कामों की शुरुआत होती है। हर चीज की शुरुआत चिंतन के स्तर पर ही होती है। हमारे दिमाग में एक कोई भी विचार आता है और फिर विचार को ही हम पूरा करने के लिए, लागू करने के लिए, पूरा करने में आप इच्छा शब्द का उपयोग कर सकते हैं, हम काम करने लगते हैं, कर्म में जुट जाते हैं। मित्रों, आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो खासकर इसी कर्म से ही संबंधित बात है, और वो बात फ्रेंड्स यह है कि ज्यादातर मैंने देखा है कि जब कर्म करने की बात आती है तो हम कहीं न कहीं पीछे हटने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, यानी कि ज्यादातर मौकों पर ही यही होता है, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ भी यही होता है, और जिनके साथ ऐसा नहीं होता है या ऐसा कम होता है, वही आपको दोस्तों जिंदगी की मैराथन में बहुत आगे चलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यहां मैं आपसे एक बहुत ही जीवन का कड़वा सत्य शेयर करने जा रहा हूं, और वो सत्य यह है कि दोस्तों, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसके लिए मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा शब्द है ही नहीं कि वह सत्य है, वह रियलिटी है। इसमें दो मित्रों इतनी ताकत होती है कि आप इसे झुठला नहीं सकते, आप इसे बरगला नहीं सकते, आप इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर नहीं सकते। वह हो कर रहेगा, ये बात अलग है कि वह कब होता है। दोस्तों, इसकी जो स्थिति होती है सच की, वो स्थिति आप कह लीजिए कि बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। मैथमेटिक्स मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि दो और दो कितने होते हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है 3.9 या 3.99 होने की, वो चार ही होंगे। कोई गुंजाइश नहीं है 4.001 होने की, वह चार ही रहेगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स। दोस्तों जीवन का सत्य भी यही है। अब मैं इस जीवन के सत्य को सच पूछे तो थोड़ा सा समेट कर कर्म के सत्य पर लाना चाह रहा हूं। कर्म के सत्य का क्या मतलब है मित्रों? जो इस कर्म के सत्य की मैं बात कर रहा हूं, सच पूछे तो भारतीय जो मेधा है, इंडियन विजडम है, या हमारा जो फोक विजडम है, जो लोक चेतना, फोक कॉन्सियस कहना चाहिए, जो हमारी जो इथॉस है, बहुत जबरदस्त है, अद्भुत है। आप मित्रों गांव के लोगों को जितना भी अशिक्षित समझ लीजिए, अनपढ़ समझ लीजिए, एक विचित्र सा शब्द आ गया है गंवार, जिसका मतलब मूर्खता से लगाया जाता है। नहीं तो किसी जमाने में तो गांव में रहने वाला गंवार होता था, शहर में रहने वाला शहरी होता था, लेकिन हमने मान ही लिया है कि गांव में रहने वाले गंवार होते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। चाहे आप जो भी शब्द दे दीजिए, लेकिन उनमें जो विजडम है वो बहुत जबरदस्त है। और हमारी लोक जीवन का जो विजडम है हमारा, वो क्या कहता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों चार शब्द हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी को दूसरे शब्दों में कह दिया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों सुनने में तो ये बहुत ही सामान्य सा वाक्य लगता है और शायद हम बहुत ज्यादा इस पर गौर भी नहीं फरमाते, सुना और भुला दिया, ठीक है कहा गया। लेकिन इसमें आप जीवन के मैथमेटिक्स का फार्मूला देख रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिस अंक में जितना जोड़ोगे वही परिणाम आएगा, दो के साथ 20 जोड़ोगे तो 22 होगा, और दो के साथ दो जोड़ोगे तो चार होगा, और दो के साथ शून्य जोड़ोगे तो दो ही रहेगा। आप देख रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि अगर एक बार आपकी चेतना, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारों की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं ये बात कहूंगा कि आप अपने विचारों में इसे शामिल कर लीजिए तो आप शामिल कर चुके होंगे मेरे कहने से पहले ही। लेकिन विचारों में शामिल करने से तब्दीलियां नहीं आती हैं, तब्दीलियां आती हैं चेतना में शामिल करने से। वह चेतना जिसे आप दूसरे शब्दों में आत्मा कह सकते हैं, वह चेतना जो आपके चिंतन और व्यवहार का अपरिहार्य और अभिन्न अंग बन जाता है, वह चेतना जो एक तरीके से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जाकर के आपसे बिना कुछ किए ही सब कुछ करा लेती है, आप करते नहीं हैं लेकिन वह कराती रहती है। जिस दिन यह सिद्धांत, यह कहावत, हमारे लोक जीवन की यह कहावत आपकी चेतना में रच बस जाएगी, उस तरह से घुल मिल जाएगी जैसे कि गर्म दूध में चीनी घुल मिल जाती है, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही तरह के कर्म की ऊर्जा का आप एहसास करेंगे। वह दिन होगा जब आप किसी भी काम को किए बिना चैन से बैठ ही नहीं सकेंगे। आपका जो सुख है, आपका जो आत्मसंतोष है, आपका जो चैन है, सच पूछिए तो वो सीधे सीधे कर्म से जुड़ जाएगा। जिस दिन आप अपने द्वारा नियत किए गए काम को पूरा कर लेंगे, आपको आत्मसंतोष का अनुभव होगा, आपको अच्छा लगेगा। और किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे तो आप बेचैन रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, भूख मर जाएगी, नींद उड़ जाएगी, और सच पूछिए तो आपके व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और जब यह सब होने लगेगा तो आपको लगेगा यार कि इन सब को बर्दाश्त करने से तो ज्यादा अच्छा है कि पहले इस काम को निपटा लिया जाए। और मित्रों जब आप अपने कामों को निपटाने लगेंगे तो क्या होगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। सिंपल सी बात है, जब आप अपने कामों को निपटाने लगेंगे तो वे ही काम फिर आपको परिणाम देने लगेंगे, परिणाम देंगे ही। लेकिन होता क्या है दोस्तों, क्या हम सच में समझते तो हम इन बातों को हैं? ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई नई चीज समझा रहा हूं, नए अंदाज में समझा सकता हूं, बस यही है। आप भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये उनके अनुभव में शामिल भी है, इसलिए हर पेरेंट अपने बच्चे को ये बात समझाते ही समझाते हैं कि बेटे अच्छा काम करो, सही काम करो, क्योंकि बट नेचुरल है कि जैसा करोगे में अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जितना इसी में तो ये शामिल है कि जितना करोगे उतना मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जमीन तो 5 एकड़ की है और उस 5 एकड़ की जमीन में आपने 5 किलो धान के बीज छिड़क दिए और उसमें जो अनाज पैदा होगा वो उसके बराबर होगा जितना 5 एकड़ में पैदा होता है, नहीं होगा ना। 5 एकड़ आपके पास अगर जमीन है तो उसमें बीज भी 5 एकड़ के अनुकूल उसी मात्रा में डालनी पड़ेगी, तब फिर आपको 5 एकड़ के बराबर उत्पादन मिलेगा। तो मित्रों, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। फ्रेंड्स, इस बात को आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, राइट? मित्रों, आपको उसी अनुपात में सफलता मिलेगी जिस अनुपात में आप तैयारी कर रहे हैं। और जब मैं अनुपात की बात कर रहा हूं तो उसे आप घंटों से मत लगा लीजिएगा। जिस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए आप उससे उसका मूल्यांकन कीजिएगा। किसी भी वजह से आप आज के अपने समय को, अभी के समय को, जो तो पूरा आपका प्रिपरेशन का टाइम है, किसी भी तर्क कुतर्क वितर्क के जरिए आप इसे बरगला सकते हैं, समय को बरगला सकते हैं, खुद को बरगला सकते हैं, अपने जानने वालों को बरगला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप सत्य को कभी भी नहीं बरगला सकते, क्योंकि वो तो बीज है। बीज आप चाहे किसी भी जमीन पर बोएं, कुछ भी सोच कर बोएं, उसमें से निकलेगा वही जो उसमें है, वह उस बीज का सत्य है और वही सत्य बाहर आएगा। इसीलिए हमारे यहां फिर से इसी बात को दूसरे कितने खूबसूरत अंदाज में कहा गया है दोस्तों, कि बोया पेड़ बबूल, बोया बीज बबूल का आम कहां से होए। अगर बबूल का बीज है तो बबूल ही निकलेगा। अगर आम चाहिए, आम की गुठली लगानी पड़ेगी, उससे आम निकलेगा, फिर उससे बबूल भी नहीं निकलेगा। दोस्तों, जिस दिन पूरी दृढ़ता के साथ आप इसे पकड़ लेंगे और अंजाम देना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप देखेंगे कि आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रह जाएगा। आज के दैनिक भास्कर में मैंने बड़ा एक खूबसूरत, एक सच्ची कहानी पढ़ी, जो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, शायद रेणु नाम है, जो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का एक जिला है, छोटा सा जिला है राजनांदगांव, बहुत ही प्यारा जिला है, मैं कई बार वहां गया हुआ हूं और वहीं के एक कवि थे जिन पर मैंने अपना एमए फाइनल का डिसर्टेशन लिखा था, तो मैं कई दिन वहां रहा भी राजनांदगांव में। एक मजदूर की बेटी, सोच करके देखिए, जिनकी मां बर्तन मांजने का काम करती है, वो आज हमारे महिला हॉकी क्रिकेट टीम में शामिल है और ओलंपिक खेलने के लिए रियो जा रही है। ये उस लड़की की कहानी उसमें दी हुई थी कि किस तरह से वो अने पिता के साथ साइकिल पर बैठकर दूध पहुंचाने का काम करती थी, दूध बेचने का काम करती थी। इसके बाद एक टीचर ने थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा असिस्ट कर दिया और बस उस थोड़े से असिस्ट से ही उन्होंने सब कुछ बदल दिया और बस उसमें लग गई, जुट गई और आज वो रियो में ओलंपिक खेलकर आएंगी। छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो ओलंपिक खेलने जा रही है, वो गौरव उन्होंने हासिल कर दिया और सच पूछे तो छत्तीसगढ़ को भी दिला दिया और नो डाउट हमारे पूरे देश को दिला दिया, महिला वर्ग को दिला दिया। तो मित्रों, जिंदगी सच है, सच की ताकत को समझिए और उसकी ताकत को समझने के बाद आत्मसात करके और उसे एक्शन में लाइए, सत्य आपका साथ देगा, इस पर यकीन रखिए। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस पोर्शन के बाद अब मैं आज के एआईआर कल के यानी एआईआर न्यूज पर आता हूं। कुछ खबरें मित्रों अच्छी हैं, रोचक हैं और हमारे लिए जरूरी भी हैं। भले ही अपने आप में बहुत ही सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में ये सब खबरें होनी ही चाहिए। पहली बात फ्रेंड्स, आपने सुना कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और डेफिनेटली अब जितनी भी इसकी बैठक होंगी आपको खूब हंगामे सुनने को मिलेंगे और एक डेमोक्रेसी का जो एक रूप होता है वो देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी का रूप क्या है मित्रों, कि कोई भी पार्टी, हालांकि बहुमत का ही की सरकार होती है, देखिए डेमोक्रेसी में सरकार बहुमत की होगी अगर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है तो, अमेरिकन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं, तो बहुमत की ही सरकार होगी। तो हमें लगता है कि जब बहुमत की सरकार है तो यार फिर तो चूंकि इसका बहुमत है तो ये जो चाहे वो कर ले, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप यही पढ़ेंगे और सामान्य तौर पर पूछा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि हां वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो आप देखेंगे कि कैसे जो सरकार बहुमत में है उसे किस तरीके से अल्पमत में जो पार्टियां हैं उनका भी सहयोग लेकर चलना पड़ता है। मित्रों, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। इसलिए आपने न्यूज में सुना कि इससे पहले सर्वदलीय बैठक की गई। मैं इनको एक थोड़ा सा टर्न दे रहा हूं, मैं एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल टर्न दे रहा हूं जो सामान्य तौर पर जो वाक्य कह दिए जाते हैं ताकि आपकी समझ थोड़ी सी बढ़ सके और सामान्य चीजों को आप सिद्धांत में तब्दील कर सके। तो जो सर्वदलीय बैठक है, यह सर्वदलीय बैठक क्या है? बहुमत की सरकार होने के बावजूद कि नहीं, हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। आपका भी सपोर्ट क्यों चाहिए? देखिए, बहुमत का मतलब सर्वमत तो नहीं है। देश की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग वह है जिसने, जो अल्पमत में लोग हैं उनको वोट दिया है। टोटल परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूं, है ना? ये तो ठीक है, जितने वोट दिए गए उसमें से एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, टोटल सीट्स उसकी ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर टोटल जितने भी लोगों ने मतदान किया अगर उसका परसेंटेज निकाले तो ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको देश के 50% से अधिक मत मिल गए हों, पहली बात। और दूसरी बात, चलिए हम मान लेते हैं कि उसको 60% मत मिल गए, पूरे देश के 60% मत सत्ताधारी पार्टी को मिल गए, चाहे वो राज्य सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार में हो, राइट? तो ये जो 40% जिन्होंने दूसरों को वोट दिए हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टी के प्रतिनिधियों को लोकसभा में या विधानसभा में भेजा है, क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वे आने वाले 5 सालों तक उनकी अनदेखी की जाती रहेगी? क्या देश उनके लिए नहीं सोचेगा? इस पर विचार कीजिए। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो एक पैटर्न है, पॉलिटिकल पैटर्न है, राजनीतिक प्रणाली है, कह लीजिए एक सिस्टम है कि भाई सरकार किसी को बनानी है तो कोई ना कोई तो आपको एक सिद्धांत लेकर चलना पड़ेगा, दैट्स ऑल। लेकिन जो नागरिक है वो तो देश के सभी नागरिक को आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो सर्वदलीय बैठक, इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान दीजिए कि देखिए, जो राष्ट्र हित पर सोचिए उसका श्रेय किसको मिल रहा है इस पर मत जाइए। तो यहां भी वो देखिए राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं। तो जहां बहुमत से जो सत्ता में है उस पार्टी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो विपक्ष में जो पार्टी है, मैं विपक्षी दल की बात नहीं कर रहा हूं जो एक रिकॉग्नाइज होता है, जितने भी चाहे वो किसी एक पार्टी का एक ही मेंबर क्यों ना हो लोकसभा में राज्यसभा में, एक ही मेंबर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी हमारे ही लोग हैं, हम उनकी भी अनदेखी नहीं कर सकते। तो जहां सत्ता दल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जितने भी विपक्ष में पार्टियां हैं उन सबको साथ लेकर चलेगी, वहीं जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं डेमोक्रेसी में उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा महत्व राष्ट्रीय हितों को देंगी। इसलिए मैं राष्ट्रीय हित जब शब्द कह रहा हूं मित्रों, तो देखिए यहां दो चीजें और होती हैं, राष्ट्रीय हित नंबर एक, दूसरा राज्य के हित, राज्य के हित प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु का कोई एमपी है तो उसको तमिलनाडु पर ज्यादा जोर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित की जहां बात आएगी उसको तमिलनाडु के हित को छोड़ना चाहिए। इसके बाद आ जाता है बिल्कुल स्थानीय हित, स्थानीय हित के जो कि वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके दिमाग में अपना स्थानीय हित भी होगा। और फिर चौथा आता है अपना पॉलिटिकल हित, राजनीतिक हित, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बट नेचुरल है कि वो अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर लड़ती हैं, और वो तो सीधी लड़ाई ही है, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को पराजित करके आई हैं, तो इस लड़ाई में उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि हमें आगे भी ये लड़ाई तो जारी रहने वाली है ना, अनंत चलने वाली लड़ाई है, 5 साल के बाद फिर होगी, तो हम अगली बार भी आए तो वहां वह अपना पॉलिटिकल हित देखेगा, वहां पॉलिटिकल हित ज्यादा मायने रखेगी। तो इस तरीके से मित्रों ये कॉम्बिनेशन चलता है। तो मैंने आपको थोड़ी सी बात राज्य खासकर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अभी मानसून सत्र में पर जो निगाहें लोगों की लगी हुई हैं वो अभी स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो बिल है, अधिनियम है, उस पर लगी हुई है। सरकार लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से यह बिल पारित हो जाए, देखते हैं कि उस पर उसके बारे में क्या होता है। और भी जो इम्पोर्टेंट अगर कोई ऐसे बिल पारित होते हैं उनके डिस्कशंस हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान रखना होगा, और डेफिनेटली डेली आरडीओ के माध्यम से और प्रेस क्लिपिंग्स के माध्यम से, जहां तक एकेडमी की बात है तो वह आप लोगों के साथ हमेशा चलती ही रहेगी। मित्र, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर थी वो खासकर विश्व धरोहर को लेकर के थी, और ये सिविल सर्विस में तो अब नहीं पूछा जाता है लेकिन स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में पूछा जा सकता है, और खासकर ऐसे स्टूडेंट जो उस स्टेट से हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खबर हो जाती है। आपको मालूम है कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक सांस्कृतिक कह लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्कृति वगैरह पर काफी काम करती है, तो जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इन्होंने भारत के अभी 2 स्थानों को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। हालांकि न्यूज में आप सुनेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसे लगता है, जैसे न्यूज में कहा गया कि चंडीगढ़ एवं सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान, चंडीगढ़ एवं सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान, तो ऐसा लगता है जैसे चंडीगढ़ का भी कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा और सिक्किम का भी कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा इस तरह से, लेकिन वो बहुत क्लियर है क्योंकि बाद में फिर वो क्लियर हो जाती है चीजें कि चंडीगढ़ शहर को, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया है, जो पूरा का पूरा आर्किटेक्ट है कह लीजिए, उसका जो वास्तुशिल्प है, जो फ्रेंच ही एक वास्तुशिल्पकार थे ला कार्बुजिए, ला कार्बुजिए पर प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि चंडीगढ़ का नक्शा किसने बनाया, तो शहर को और खासकर जो सिक्किम में जो एक वहां की जो पहाड़ी है, चोटी है, दुनिया में तीसरी ऊंची चोटी है, खांग चंग चिंग तुंगा नाम कुछ इसी तरह से, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत उच्चारण कर रहा हूं क्योंकि जो सिक्किम के अगर श्रोता होंगे तो वो डेफिनेटली वो तो अपने नाम को बहुत अच्छे तरीके से उच्चारित कर ही लेंगे। तो इन 2 को उन्होंने विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट ये है। इससे पहले नालंदा को शामिल किया जा चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा था। मित्रों, फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर इस फिल्म सेंसर प्रणाली को लेकर भी थी। आपने देखा है कि उड़ता पंजाब के मामले को लेकर के जो फिल्म सेंसर बोर्ड, हालांकि इसको फिल्म सेंसर बोर्ड कहते हैं, सेंसर बोर्ड उसमें है नहीं, वो फिल्म प्रमाणन है, उसका उद्देश्य फिल्म है ना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। आप देखेंगे कि जब कोई भी फिल्म शुरू होती है ना तो एक सर्टिफिकेट सा आता है, उसमें जो टाइटल है उसका है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, है ना, लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड नाम से वो चल गया है तो लोग उसी का उपयोग करते हैं। तो उसके बारे में हमारे आईएनबे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसकी पूरी कार्यप्रणाली के बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि फिल्म जगत के लोग मिले थे और सच पूछे तो इस बात को लेकर के फिल्म जगत में काफी बेचैनी भी है कि उड़ता पंजाब को जिस तरीके से सेंसर करने की कोशिश की गई कि आप फिल्म का नाम बदलिए, उसमें से ये नाम हटाइए, उसमें से ये सीन हटाइए, फलाना फलाना कीजिए, तो ऐसी कतर अभियोत की बात हो रही थी कि इससे ज्यादा अच्छा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड खुद ही उस फिल्म को बना करके जैसा चाहे वैसा रिलीज कर दे। अगर आप अभिव्यक्ति पर कलात्मक चीजों को कलात्मक नजरिए से न देख करके स्टेटमेंट के तरीके से देखेंगे तो फिर कला का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। फिर तो सबसे कह दिया जाए कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाए, और डॉक्यूमेंट्री भी बनाया जाएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट्री को बनने दिया जाएगा ज्यों कहते हैं। वहां भी आप कुछ कह सकते हैं कि इससे उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी, उसमें इसका अपमान हो रहा है, उसमें ये गलत इंसिडेंस है, फलाना फलाना, तो उसका कोई अंत होता नहीं है मित्रों। और सच पूछे तो अब हम डेमोक्रेटिक सेटअप के और खुलेपन की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं जहां इस तरह के प्रतिबंध अब बहुत ज्यादा स्थायी नहीं हो सकते और सराहे भी नहीं जा सकते। तो एक अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कि ये इश्यू एक सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट इश्यू हो सकता है, क्योंकि उड़ता पंजाब पर काफी चर्चा हुई और मैंने इस पर आप लोगों को काफी क्लिपिंग्स और आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं। अरुणाचल प्रदेश का संकट आप देख रहे हैं दोस्तों, फिलहाल सुलझ चुका है और वहां नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं। इस पर अब थोड़ा बहुत आपको जो कुछ भी पढ़ने को मिलेगा आप देखते रहिए, और सारा का सारा जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, सारे दृष्टिकोण वो एक तरीके से फेडरलिज्म को लेकर होना चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था किस तरीके से बनी रहे, किस तरह से कमजोर हो रही है, क्यों किया जा रहा है। तो उस लिहाज से आप इन घटनाओं को देखते रहिएगा। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको एक इससे जुड़ा हुआ एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और आखिरी जो खबर थी दोस्तों वो तुर्की की स्थिति को लेकर थी। वो तुर्की जो 1922 के आसपास कमाल पाशा के नेतृत्व में इतना प्रोग्रेसिव कंट्री बन गया था, अब देखिए कि वहां किस तरह के द्वंद और संघर्ष चल रहे हैं। ये कह लीजिए कि आपस के ही संघर्ष हैं, और ये इसका कोई आईएसआईएस उस तरह का मामला नहीं है। ये कह लीजिए कि सत्ता और सत्ता पक्ष के ही दो गुटों के बीच होने वाली लड़ाई ये थी। लेकिन आपको केवल इतना चाहिए कि आप एटलस पलटें और उसमें तुर्की की स्थिति देखें कि वो कहां पर मौजूद है, उसके आसपास के कौन से देश हैं, क्योंकि आसपास के देशों को देखने के बाद आपके दिमाग में ये एक थोड़ी सी समझ या इम्प्रेशन सा बन जाएगा कि अगर तुर्की में इसी तरह से गृह युद्ध की स्थिति रही या कमजोर सरकार रही तो क्या इसका फायदा आईएसआईएस जैसे संगठन उठा सकते हैं, क्योंकि आईएसआईएस भी इस्लाम को की गलत व्याख्या कर करके अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहा है, और टर्की भी इस्लामिक देश है, तो उसको क्या फायदा मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, ये आप जब मैप में देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। जानबूझकर मैं नक्शे की बात आपको नहीं बता रहा हूं, कुछ तो मुझे आपके लिए भी अब छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, न्यूज से बस इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। दोस्तों, न्यूज़पेपर में आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें है एक अरुणाचल पर जो मैंने आपको कहा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है, एक स्किल इंडिया पर इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट है, इसको भी आप देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया पर पिछले साल हालांकि एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं कि इस बार एक स्वतंत्र रूप से इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए, इसकी पूरी संभावना मुझे लगती है। आतंकवाद की स्थिति आप देख ही रहे कि इस बीच में फिर से फ्रांस के नीस में कितना जबरदस्त हमला हुआ है, जो बहुत ही दुखद हमला रहा है कि लोग जश्न मना रहे हैं राष्ट्रीय, और उस दिन किस तरह से ट्रक ने घुस करके 80-90 लोगों को कुचल दिया है, मतलब कितनी दशंस हत्याएं, पूरी की पूरी दुनिया किस तरीके से आतंक के साए में जी रही है और खून के छींटों से बदरंग होती चली जा रही है। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं, देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, लेकिन विश्व की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इन पर अब हमारी निगाह थोड़ी होनी चाहिए और बहुत ही इस पर लॉजिकल तरीके से आप चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दें। मेंस में सवाल आ सकते हैं और इंटरव्यू में भी इस पर पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कम से कम पूरी दुनिया इसको लेकर के बेहद चिंतित हो उठी है। और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल जो दैनिक जागरण का है, पुष्पेश पंत जी का, जो जेएनयू में पढ़ाते हैं, अब नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ाते थे, उनका आर्टिकल है, तो कुछ जानकारी आपको इंटरनेशनल लेवल की इसमें मिल सकेगी। मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख मैं आज आपको उपलब्ध करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसके बारे में मैं कभी स्वतंत्र रूप से आपसे बात करूंगा। ये दैनिक भास्कर का है, जो जिसका शीर्षक है, जहां प्रसन्नता है विकास का अनूठा पैमाना। भूटान का आपको मालूम है कि जिन्होंने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का सिद्धांत दिया है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, हम लोग कभी बात करेंगे, क्योंकि जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर है मेंस का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एक तरफ तो पश्चिम की अवधारणा है विकास की, प्रसन्नता की, खुशी की, दूसरी तरफ भूटान एक बिल्कुल ही अलग तरीके की अवधारणा को लेकर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको एक नई दृष्टि देने में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो मित्रों, न्यूज़पेपर के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक बहुत ही अच्छा मेल मिला है प्रशांत मवानी का, जो राजकोट / लंदन, ये लंदन के स्टूडेंट रहे हैं और हमारे सेकेंड बैच में भी ये आए थे और वैसे रहने वाले राजकोट के हैं नो डाउट। बहुत ही लवली लेटर इन्होंने लिखा है, ब्यूटीफुल उनकी इंग्लिश है, बहुत अच्छी इंग्लिश है। तो प्रशांत, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जो दूसरे दोस्तों के जो नाम हैं वे हैं रत्नेश सिंह कानपुर से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से यूपी से, सुशांत चौहान एटा आप भी यूपी से, रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से, सुधीर सिंह कानपुर से, शिरीन सूरज राजपूत शाहदा महाराष्ट्र से, निमिश शर्मा बिजनौर उत्तर प्रदेश से, नीरज स्वार्थ चौधरी और धर्मेंद्र नेहरा जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस समाप्त होता है। नमस्कार।